वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, आप सबको मेरा मसीही नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से एक बार हमें यह सुअवसर मिला है कि हम उसके जीवित वचनों का अध्ययन करें। पिछले बार हमने लुका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 1 से 14 पद तक का अध्ययन किया था। आज हम लुका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय उसके 15 पद से लेकर के अध्याय 5 के 1 से 4 पद तक का अध्ययन करेंगे। आइए हम इससे पहले के अध्ययन को आरंभ करें, हम परमेश्वर की निकटता में जाएं और प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन का अध्ययन करें, आपके जीवित वचन हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, हमें सिखाने और समझाने पाए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, बीमारी हालत में हैं। प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, ताकि वे जानने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। पिताजी, फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करें और लुका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षा के बाद प्रभु यीशु वापस गलील में आया और उसने आराधनालयों में सिखाया। लोगों द्वारा उसकी महिमा की गई, उसकी स्तुति और प्रशंसा की गई। यह पद धार्मिक विषय पर विचार विमर्श जैसा लगता है, परंतु आप जानते हैं कि यह संभव है कि आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें और फिर भी उसका इनकार या तिरस्कार कर सकते हैं, और यह संभव है कि हम धार्मिक गाना गा सकते हैं, अर्थात गाते भी हैं, और उसके दावों का इनकार कर सकते हैं। वही भीड़ जिसने होसाने के गीत गाए और उसे राजा बनाना चाहा, उसने दूसरे दिन उपद्रवी भीड़ का साथ दिया जो उसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। मैदान के सामने में खाली क्रूस पड़ा हुआ है और मैदान के पीछे सूखे खजूर के पत्तियों को गधा खा रहा है के रूप में मैं क्रूस पर चढ़ाए जाने के चित्र को देखता हूँ। यह इसी तरह का था। एक दिन प्रभु यीशु की स्तुति की गई और दूसरे दिन उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। अब हम परमेश्वर के वचन में दर्ज सबसे सुंदर घटनाओं में से एक घटना में आते हैं। यह एक ओजपूर्ण कहानी है जो रोशनी के साथ अलग दिखती है। यह अर्थ से सुगंधित है, देखने में यह मनोरम है, और इसी तरह डॉक्टर लुका हमें बताते हैं लुका 4 अध्याय के 16 से 21 पद में लिखा है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। प्रिय मित्र, हम यहाँ पर देखते हैं कि यह घटना केवल डॉक्टर लुका के द्वारा दर्ज की गई है और यह इतनी अद्भुत है कि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें कहा गया है कि परीक्षा के बाद प्रभु यीशु अपने शहर लौट आते हैं। साधारण तौर पर अपना शहर उस लड़के के लिए जो प्रसिद्ध हो जाता है गर्व का विषय होता है। जैसे उसकी रीति थी, विश्राम के दिन में वह नासरत के आराधनालय में गया। ध्यान दें कि उसने इस गलत बात को कभी नहीं स्वीकार किया कि आप निर्धारित जगह के साथ साथ प्रकृति में कहीं भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यद्यपि कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फिर भी कुछ लोगों के सज्जनता के साथ यह कहते सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ कि वे लोग फुटबॉल खेलते हुए भी उसी तरह परमेश्वर की आराधना आसानी से कर सकते हैं जिस प्रकार से वे रविवार को कलीसिया में करते हैं। वे जो कहते हैं सही है, लेकिन मैं उनसे हमेशा यह सवाल पूछता हूँ, रविवार सुबह जब आप फुटबॉल के मैदान में जाते हैं तो क्या आप परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं या फुटबॉल खेलने के लिए? सच्चाई तो यह है कि फुटबॉल के मैदान में परमेश्वर की आराधना का कोई इरादा नहीं होता है। आप रविवार सुबह परमेश्वर की आराधना करने के लिए कलीसिया में जाइए और तब फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में जाइए। विश्राम दिन आराधनालय में जाना हमारे प्रभु यीशु की रीति थी। प्रभु यीशु के समय में आराधनालय यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्था में से एक था। यह बेबीलोन में बंधुआई के दौरान अस्तित्व में आया होगा। यहूदी अपने देश, मंदिर और वेदी से दूर थे। संदेह नहीं कि वे उन व्यक्तियों के चारों ओर जो धार्मिक और परमेश्वर का भय मानने वाले थे, परमेश्वर के वचन सुनने और आराधना में शामिल होने के लिए खींचे चले आए। यजकेल नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसके एक पद और 20 के एक पद में बताया गया है कि प्राचीन अर्थात बुजुर्ग लोग यजकेल के चारों ओर इकट्ठे हुए और यही आराधनालय के अस्तित्व में आने की पृष्ठभूमि हो सकती है। देश से निकाले जाने के बाद भी आराधनालय बना रहा। शुरू शुरू में यह मूसा की व्यवस्था की व्याख्या के लिए था और बाद में प्रार्थना का समय और प्रचार भी इसमें जोड़ा गया। तथापि आरंभ में आराधनालय सभी वर्गों के लोगों के लिए व्यवस्था निर्देश देने के लिए था। प्रभु यीशु के समय में सभी बड़े शहरों में आराधनालय थे। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के जीवन के उन खामोशी भरे वर्षों के एक दिन के बारे में बता सकता हूँ। बाकी प्रत्येक सप्ताह के 6 दिन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसके सिवा कि वह एक बढ़ई का पुत्र था और वह बढ़ई का काम करता था। उन दिनों में उसने काम किया, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि हर एक विश्राम दिन वह आराधनालय में गया। वह निर्धारित स्थान में आराधना के लिए गया क्योंकि वहां वह गवाही दे सकता था। मेरे प्रिय मित्र, वह कुछ समय के लिए अपने घर आया है और अब वह आराधनालय में है। उसे धर्मशास्त्र दिया गया और वह उसमें से पढ़ना शुरू करता है। वह यशाया की पुस्तक से पढ़ता है और उन दिनों में बाइबल अध्यायों और पदों में नहीं बांटा गया था। अगर बांटा गया होता तो वह यशाया 61 अध्याय का एक या दो पद में से पढ़ता। यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उसने पढ़ना कहाँ पर समाप्त किया, उसने नहीं पढ़ा। और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन उसने पुस्तक बंद किया और उसे सेवक के हाथ में वापस दे दिया। यह आश्चर्य की बात है कि उसने पढ़ना वाक्य के अंत में बंद नहीं किया, लेकिन वाक्य समाप्त होने से पहले बंद किया। हमारे अनुवाद में उसने कोमा पर पढ़ना बंद किया, लेकिन जो मूल पाठ है वह पढ़ रहा था, उसमें कोई कोमा नहीं था। उसने हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन वाक्य खंड का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। उसने इस वाक्य खंड के बाद आने वाले किसी मूल खंड का जिक्र नहीं किया है। क्या आप जानते हैं क्यों? उसने भीड़ को देखा और कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यहां धर्मशास्त्र का एक अनुच्छेद है जिसका कोमा तक पूरा होने जा रहा था और बाकी अनुच्छेद प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक पूरा नहीं होने वाला था। पलटा लेने का दिन अभी तक नहीं आया है। पलटा लेने का दिन क्या है? भजन संहिता 2 उसके 8 के अनुसार, यह वह समय है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। प्रभु यीशु कैसे अन्य जातियों को अपनी निज संपत्ति होने के लिए प्राप्त करने जा रहे हैं? भजन संहिता 2 उसके 9 के अनुसार, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मित्र, हम देखते हैं कि उस तरह से हमारे प्रभु सामर्थ में आएगा। वह पलटा लेने का दिन होगा और वह प्रभु का महान दिन होगा और यह उस समय होगा जब प्रभु यीशु दूसरी बार यहाँ पर आएंगे। वह पहले बार गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए गया ताकि वे उद्धार को प्राप्त करें। वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ उद्धार के महिमामय संदेश को लाने के लिए आया। हम लोग अभी भी उस अद्भुत दिन अर्थात सुसमाचार के दिन में हैं। जब वह दूसरी बार आएगा तो वह पलटा लेने का दिन होगा। लूका 4 उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? लोगों ने उस पर दृष्टि डाली और उसे यूसुफ के पुत्र बढ़ई के रूप में याद किया। वह सब कुछ बिगड़ने जैसा लगा कि वह मसीहा कैसे हो सकता है। लूका इसे बहुत स्पष्ट रूप में कह रहा है कि प्रभु यीशु ने अपने ऊपर हमारी कमजोरियों को उठा लिया। लूका 4:23-27 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलिशा भविष्यवक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। प्रिय मित्र, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इसे अद्भुत रीति से समझा रहे हैं। उसने दो अन्य जातियों का उदाहरण लिया जो इसराइल देश के बाहर रहते थे, सराप की विधवा और सीरिया का नामान, जिनके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्यकर्म किया था। वह उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वे परमेश्वर के निज लोग, प्रभु यीशु जो था उसको नहीं मानने के कारण परमेश्वर के बड़ी आशीष को खोने जा रहे थे। वे इसराइल की बहुत विधवाएं और बहुत कुष्ठ रोगी के समान होंगे जिनको एलिया के समय में चंगा नहीं किया गया। हम लूका 4:28-30 पद में पढ़ते हैं, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, पर वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। यीशु मसीह के नगर के लोगों ने उसका इनकार किया। नासरत के चारों ओर उबाड़ खाबड़ देश है और वे उसे मौत के इरादे से धकेलने के लिए पहाड़ की चोटी पर ले गए। इस उपद्रवी भीड़ से उसका बचना एक आश्चर्यकर्म था। प्रिय मित्र, आगे हम यीशु मसीह का अपना प्रधान कार्यालय नासरत से कफरनहूम ले जाने के बारे में और अपनी सेवकाएं जारी रखने के बारे में देखते हैं। लूका 4:31 पद में लिखा है, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सप्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि इस पद से लेकर बाकी पूरे अध्याय में प्रभु यीशु के साथ हमारा पूरा एक दिन है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे, हम में से बहुत लोग उसके साथ एक दिन व्यतीत करना पसंद करते। लूका हमारे लिए इसे संभव बनाता है। मत्ती और मार्कुस दोनों इस तथ्य को दर्ज करते हैं कि प्रभु यीशु अपने नासरत नगर से अपना प्रधान कार्यालय समुद्र के किनारे गलील नगर को ले गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके अपने नगर के लोगों ने उसका इनकार किया। लूका 10:15 पद के अनुसार, एक दिन आया जब उसने कफरनहूम के लोगों से कहा, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। उसका प्रधान कार्यालय वहां होने के कारण उनके लिए कितना अच्छा अवसर था। ज्योति जिम्मेदारी का निर्माण करती है। लूका 4:32 पद में हम पढ़ते हैं, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। मेरे मित्र, विश्राम के दिन जब प्रभु यीशु ने आराधनालय में सिखाया तो वो शास्त्री या फरीसी के समान नहीं, परंतु एक अधिकारी की नाई बोल रहा था। लूका 4:33-37 पद में हम पढ़ते हैं, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। हम ऐसे दिन में रह रहे हैं जब शैतान वादी ने अपना कुरूप सिर फिर से उठाया है और शैतान उपासना एक सच्चाई है। दुष्ट आत्माएं हमारे प्रभु यीशु के दिनों में काम कर रही थी और अब वे काम कर रही हैं। हमारे प्रभु यीशु ने एक मनुष्य से दुष्ट आत्मा को निकाला। यहाँ तक कि यदि नशीले पदार्थ के इस्तेमाल को देखा जाए, कुछ कामों और भयानक अपराधों को समझना कठिन है। जब तक कि उसका करने वाला शैतान की शक्ति और नियंत्रण के अधीन नहीं होता है। हम लूका 4 के 38 और 39 पद में पढ़ते हैं, और वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और वह उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। प्रिय मित्र, हम देखते हैं कि आराधनालय छोड़ने के बाद ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु शिमोन पतरस के घर संभवतः दोपहर का भोजन करने के लिए गए। जब वह शिमोन पतरस के घर में था तो उसने शिमोन की पत्नी की मां अर्थात उसकी सास को चंगा किया, जो तेज बुखार से पीड़ित थी। बीमारियों की गंभीरता का संकेत यह कहने से मिलता है क्योंकि हल्का या तेज बुखार था। जाहिर है कि यह एक गंभीर बीमारी थी। हमारे प्रभु यीशु ने लूका के औषधि संबंधी शब्द शांत हो जाओ इस्तेमाल करते हुए बुखार को डांटा। बुखार उस खुखार कुत्ते की तरह था जिसने जंजीर को तोड़ दिया हो। हमारे प्रभु यीशु ने पाप के साथ इसी तरह व्यवहार किया। वह तुरंत उठी और उसकी सेवा की। जब प्रभु यीशु ने किसी को चंगा किया, चंगाई धीरे धीरे नहीं आई परंतु तुरंत आई। यह एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले मैंने एक सभा के बारे में सुना जो एक विश्वास से चंगा करने वाला ने आयोजित किया, और खबर दी गई कि एक लंगड़े को सभा मंच पर लाया गया और उसे चंगा घोषित किया गया। तब उसे उसी दशा में लंगड़ाते हुए ले जाया गया। उसके बाद मंच पर एक व्यक्ति आया जो कहता था कि उसे आंतरिक अर्थात शरीर के अंदर कैंसर है। विश्वास से चंगा करने वाले ने घोषित किया कि वह तुरंत कैंसर से चंगा हो गया है। यह आश्चर्य की बात है कि इस तरह की गवाही को लोग कैसे मान लेते हैं। वह लंगड़ा तुरंत चंगा क्यों नहीं हुआ? यदि हमारे प्रभु यीशु ने किया होता तो चंगाई तुरंत हो जाती। किसी को पूछते हुए मैं सुन सकता हूं, क्या आप दैवीय चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं? मेरा उत्तर है कि दूसरा किस प्रकार का चंगाई है। सभी चंगाई परमेश्वर की ओर से है। डॉक्टर लूका हमें यही बताता है और लोग हमेशा इस तथ्य को नहीं समझते हैं। एक अच्छे डॉक्टर जो टेक्सास में थे, उसने एक बार कहा कि मैं पर्चा भेजता हूं परंतु परमेश्वर चंगा करता है। मैं शरीर के उस भाग को निकालता हूं जो शरीर को दुख पहुंचाता है, लेकिन चंगाई केवल परमेश्वर को ही करना है। यह कितनी अच्छी गवाही है। परमेश्वर के अलावा और कोई व्यक्ति उसे चंगा नहीं कर सकता। हम लूका 4 अध्याय के 40 से 44 पद में पढ़ते हैं, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और यह कहते हुए कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि वह मसीह है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ भी उसके पीछे उससे ढूंढते हुए आ गई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए जाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। मित्रों, हम देखते हैं कि उसका दिन सुबह आराधनालय में सिखाने से शुरू हुआ और अब शाम देर हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय से बाहर भीड़ के पास जाते हैं जो वहां एकत्रित थे, और वह स्पर्श और चंगा करते हुए एक से दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। मत्ती 8 अध्याय उसके 17 में मत्ती ने इस घटना को दर्ज करते हुए यशायाह नबी से उद्धरण लिया है। लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारे प्रभु यीशु ने हमें अद्भुत रीति से चंगा किया। यशायाह 53 उसके 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रभु यीशु ने बड़ी दया से लोगों की दुर्बलताओं और बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, इसके बावजूद भी कि इसराइली जाति ने उसे परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझा। हम उसे इसी तरह से समझते हैं। मेरे प्रिय मित्र, आप देखिए, जहां तक हम जानते हैं उसने उनके विश्वास के आधार पर उनको चंगा नहीं किया, परंतु उनके दुख को देखकर वह उनके प्रति तरस से भर गया और उन्हें चंगाई दी। हमें कहा गया है कि आज हमें इसी तरह की दया दिखानी है। गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रिय मित्र, लुकार्चे सुसमाचार 4 अध्याय का अंत यहीं पर होता है और अब हम लुकार्चे सुसमाचार के 5 अध्याय उसके 1 से 4 पद को आगे देखेंगे। इस अध्ययन का शीर्षक है यीशु मसीह दूसरी बार अपने शिष्यों को बुलाते हैं, प्रभु यीशु कुष्ठ रोगी को चंगा करते हैं, प्रभु यीशु एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मती को बुलाते हैं, प्रभु यीशु नए पहरावन और नए मस्कों का दृष्टांत देते हैं। तो आइए अब हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरी बार अपने शिष्यों को बुलाने के बारे में देखें। लूका 5 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। प्रेमित्र, गन्नेसरत की झील ही गलील का समुद्र है। मछुए अपनी नाव छोड़कर अपने जाल धो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव पर चढ़ा और उसे नाव को किनारे से थोड़ा हटाने को कहा। क्या मंच है! मैं विश्वास करता हूं कि यह उदाहरण चित्रात्मक और सुझावात्मक दोनों है। हर एक मंच मछली पकड़ने की नाव है। मछली पकड़ने की कोशिश में परमेश्वर का प्रचार करने की एक जगह है। उसने इन लोगों से कहा था कि वह उन्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं और आप मछली पकड़ेंगे जब भी हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। शिष्यों ने नहीं पकड़ा, लेकिन इसका अर्थ है कि जो इस काम में है उसे नहीं भूलना चाहिए कि उसके जीवन का सबसे बड़ा काम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। हम लुका उसके 5 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातचीत समाप्त करने के बाद उसने पतरस से कहा, अब हम मनुष्यों को पकड़ना बंद करेंगे और अब हम मछलियों को पकड़ने जा रहे हैं। मत्ती 4 अध्याय उसके 19 और मार्कुस 1 अध्याय के 17 में मत्ती और मार्कुस हमें बताते हैं कि पहली बार जब प्रभु यीशु ने इन लोगों को बुलाया, वह गलील झील के किनारे फिर रहा था। उसने शिमोन पतरस और उसके भाई अंद्रियास को झील में नाव डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब ये लोग अपने धंधे मछली पकड़ने के लिए लौट गए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3 बार आह्वान दिया। वह उनमें से अधिकांश लोगों से यरूशलेम में मिला था। यूहन्ना इसके बारे में हमें अपने पहले अध्याय में बताता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने उसे प्रकट किया तो उसके चेलों में से कोई नहीं जानता था कि यीशु कहाँ रहता है। फिलिप, नथनियल, शिमोन पतरस और अंद्रियास यूहन्ना के पीछे चलने वालों में से थे। उस समय प्रभु यीशु ने इन लोगों को अपना चेला होने के लिए नहीं बुलाया, परंतु वह उनसे सिर्फ मिला था। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह गलील झील में से होकर जा रहा था, तब उसने उन्हें मछली पकड़ते हुए देखा और उन्हें अपने पीछे आने के लिए बुलाया। उन्होंने अपना जाल छोड़ा और उसके पीछे हो लिए। अब वे अपने धंधे मछली पकड़ने लौट गए हैं। बाद में डॉक्टर लुका हमें बताएंगे कि एक बार फिर प्रभु यीशु ने उन्हें मनुष्यों को पकड़ने के लिए बुलाया और उस समय उसने उन्हें प्रेरित बनाया। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर से भीड़ से बातें कर रहे थे, तब शिमोन पतरस नाव पर बैठकर सुन रहा था। जब उसने बोलना समाप्त किया, उसने शिमोन से कहा, अपने नाव गहराई में ले चलो और अपनी जाल फेंको। अब तुम मेरे साथ मनुष्यों को पकड़ना छोड़ो और मेरे साथ मछली पकड़ने चलो। मेरे प्रेमित्र, यह कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु लोगों के प्रतिदिन के जीवन में कितने घुल मिलकर रहते थे और उनके कामों में सहायता करते थे, जैसे कि प्रचार करने के बाद वह पतरस के साथ मछली पकड़ने में जुट गए। बाइबल हमें इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 15 पद में बताती है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी वह निष्पाप निकला। प्रिय मित्र, आज भी वह हमारे साथ रहता है कि वह हमारी सहायता करे। जब भी हम किसी तकलीफ में, बीमारी में, कष्ट में रहते हैं, वह हमारी सहायता करता है, क्योंकि उसने सारे दुखों को हमारे जैसे ही भोगा है ताकि हमें मदद कर सके। प्रिय मित्र, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने आज के इस वचन के द्वारा अवश्य ही आपसे बातचीत किया है। यदि आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, प्रभु के पास आइए। वह आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
राजाओं का राजा है।
राजाओं का